ओम शांति। भट्टी का आनंद ले रहे हैं। शायद आप सब भट्टी वाले हैं, मुझे लग रहा है। भट्टी में तो अनुभव होता ही है। भट्टी माना बाप के साथ अनुभव करना, है ना? वैसे मधुबन के पांडव भवन में भट्टी करना माना और ज्यादा अनुभव करना, क्योंकि स्थान की महिमा भी होती है ना। स्थान के साथ साथ वहां का वायुमंडल भी वैसे ही होता है। तो मैं समझता हूं आप सब भट्टी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। आज तो पहला दिन था, अभी दो दिन बाकी है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन शायद आपको जाना होता है। ये तीन दिन ऐसे भट्टी करो जैसे हम इस स्थूल दुनिया में है ही नहीं। वतन में, मूल वतन में, सूक्ष्म वतन में हम है, ये अनुभव करके आपको जाना है। अच्छा, आज का विषय है संगमयुगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य क्या है। आपने सोचा होगा और वो लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ करते होंगे, लेकिन हम ब्राह्मणों के जीवन के अलावा अगर लौकिक में भी कोई भी व्यक्ति, उसका लक्ष्य क्या होता है, वो क्या चाहता है जीवन में, कौन बताएंगे? मनुष्य जीवन का, लौकिक का, हमारा नहीं, लौकिक में भी मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, वो किस लिए जीना चाहता है, कौन बताएंगे? बोलो। सुख और शांति के लिए। और माताएं? अच्छा, हाँ नहीं, सार में एक ही शब्द में बताओ, किस लिए, कैसे जीना चाहता है वो? मनुष्य इतना सारा मेहनत करता है, दिन रात बिता के काम करता है, धंधा करता है, बिजनेस करता है, किस लिए? सुख से जीने के लिए, है ना? कोई भी करे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सुख से जीने का। लेकिन सुख जीने के लिए, सुख से जीने के लिए मनुष्य क्या गलती कर बैठा? मार्ग जो है वो गलत पकड़ के बैठा। सुख रहने के लिए, सुख से जीने के लिए क्या चाहिए वो समझा, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, है ना? पैसे से सब सुख मिलता है, लेकिन वो नहीं जान पा रहा है जितना भी पैसा आया उसके पास या आता ही रहा फिर भी वो सुखी है नहीं ना? मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता। तो फिर ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है, किस लिए जीते वो संगम युग में, कौन बताएंगे? हम लोग किस लिए जीवन जी रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या बनने? संपन्न और संपूर्ण, बाप समान बनने के लिए। और बहने माताएं बोलो, संगमियों का जीवन हम किस लिए जीते? अतीन्द्र सुख के लिए। और बोलो आप बोलते रहो तो हमें भी उमंग उत्साह आएगा। और एक प्रश्न, 21 जन्म सुख पाने के लिए, सिर्फ 21 जन्म? चलो और एक प्रश्न है, संगम युग में ब्राह्मणों के लिए बाप दादा से मिला हुआ एक विशेष वरदान कहो या गिफ्ट कहो, सौगात कहो, वो क्या है? दुआएं लेना, दुआएं देना, और फट 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 बोलना चाहिए। बाबा का ज्ञान इतना विशाल है, इतना समृद्ध है, पूछने से पहले ही उत्तर देना चाहिए, इतना एक्सपर्ट होना चाहिए हम लोग। विशेष वरदान या विशेष लक्ष्य कहो, बाबा का वरदान है, हम बच्चों का लक्ष्य है, संगम युग में कैसे जीना है, खुशी खुशी से जीना और खुशी खुशी से शरीर छोड़ना। आपने सोचा है कभी इसको? अगर बाबा की अव्यक्त मुरलियां और साकार मुरलियां, इनको आप बहुत ध्यान से सुने हैं, तो अव्यक्त मुरलियों में क्या आता है? कुछ भी हो जाए क्या नहीं छोड़ना चाहिए, प्राण भी निकल जाए खुशी नहीं छोड़ना चाहिए, सेवा भी छूट जाए खुशी नहीं, जो सेवा खुशी नहीं देती वो सेवा करनी नहीं चाहिए। सेवा करना है किस लिए? दूसरों को सुख देने के लिए। अगर दूसरों को सुख दिया तो हमें भी सुख मिलना चाहिए ना, अगर नहीं मिलता है तो वो सेवा नहीं। इसलिए संगम युग का लक्ष्य है, पुरुषार्थ है, बाप दादा का सौगात है, खुशी, उसी को क्या बोलते हैं? अतिंद्रिय सुख। वो कैसे पाए? सदा खुशी में रहने के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान का मंथन करना चाहिए और याद की यात्रा में रहना चाहिए और अच्छा, और खुशी के लिए लौकिक में और अलौकिक में कौन से स्लोगन है? एक एक बताए, मुझे सुनाई पड़े। हाँ, पहला है खुशी जैसा खुराक नहीं, और दूसरा अत्यंत सुख देखना है तो कौन सी गोप गोपिया? गोपी वल्लभ के संगम युगी गोप गोपिया। गोप गोपिया माना वही द्वापर युग के चले जाते हैं, कृष्ण की गोप गोपिया नहीं, शिव बाबा के गोप गोपिया। और क्या है? खुशी ब्राह्मणों का श्रृंगार नहीं, श्वास है। श्रृंगार बगैर रह सकते हैं लेकिन श्वास बगैर रह नहीं सकते हैं ना। और लौकिक में क्या कहते हैं खुशी के लिए? याद है किसी को? आग लगे बस्ती में और मस्त रहो मस्ती में, है ना? और क्या है? दुनिया जाए भाड़ में, हम रहे अपने नशे में, है ना? ये किसको लागू होते हैं? वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इन सबको प्रैक्टिकल लाने वाले कौन है? हम बाबा के बच्चे, क्योंकि हमें समझ में आ गया, बाबा ने ज्ञान दिया हर चीज का अर्थ क्या होता है। अच्छा, और एक है खुशी के बारे में, क्या है? प्राण जाए पर खुशी न जाए। फिर और अलौकिक स्लोगन क्या है बाबा ने जो बताया साकर मुरली में? खुशी आए। और अम्मा मरे तो क्या खाना, और अब्बा मरे तो? मतलब दुनिया की हर चीज हम बेपरवाह, कुछ भी हो जाए हम अपने नशे में रहे। ये कब होता है? सदा खुशी में रहने के लिए क्या चाहिए? बाप की याद। और माताएं बोलो बाबा के। देखो खुशी की पॉइंट्स खुशी खुशी से बोलना चाहिए, उमंग उत्साह से। जैसा नहीं वो नीचे से भूमि से ये जो है ना मरुभूमि में निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसा फुंवारा जैसा, ऐसा ज्ञान के पॉइंट्स एकदम निकल आना चाहिए। क्योंकि जिसमें जितना जितना ज्यादा ज्ञान होता है उसको योग भी अच्छा लगता है। कई लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, योग लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता योग? उनमें ज्ञान की कमी है, ज्ञान के पॉइंट्स की कमी है, ज्ञान के गहराने में वो जाते नहीं है। ज्ञान सागर के गहरे में अंदर जाके ज्ञान मोती, ज्ञान रतन, ज्ञान माणिक, इनको ढूंढते नहीं हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से। रोज क्लास में आए, मुरली सुना, चल पड़ा। हर रोज की मुरली में हमें नई नई बातें ढूंढनी चाहिए। तो सदा खुश रहने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का मंथन मनन पॉइंट चाहिए। ईश्वरीय मर्यादा में रहे। बाबा कहते हैं अगर खुशी खुश रहना चाहिए तो नशा रहना चाहिए। जिसको जितना नशा रहता है उतना खुश रहते हैं। आपने देखा होगा ना, एक शराबी भी है, जब तक शराब के नशे में रहता है वो दुनिया का कोई परवाह नहीं होता उसको, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट समझता है, देश का राजा महाराजा समझता है ना? इसको बाबा हमारे लिए नारायण नशा कहते हैं। नशा रहना चाहिए, जितना जितना नशा ज्यादा रहता है उतना उतना खुशी। खुशी का दूसरा नाम क्या है? सुख। सुख तब भी महसूस होता है जब आप खुश है। आपके पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, बहुत जायदाद है, लेकिन खुश नहीं रहेंगे तो सुखी होंगे? नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी हो जाए खुश रहो, खुशी मत गगाओ, खुश रहो, खुशी बांटो, है ना? बाबा ये आजकल मुरलियों में यही बता रहे, खुश रहो, खुशी बांटो। और नशे में रहने के लिए क्या करना चाहिए कौन बताएंगे? निश्चय बुद्धि, करेक्ट। शायद आप लोगों ने कोई नए नए ज्ञान में आए होंगे, जब आए थे नशा चढ़ जाता है, समाज वाले गांव वाले क्या बोलते हैं वो सुनाई पड़ता है? किसी को है ऐसा अनुभव? कोई पागल कहेगा, कोई ये तो पता नहीं कहां क्या हो गया इसको, किसी ने जादू कर दिया या इसका ये दिमागी खराब हो गया, ये तो ऐसे बोलते हैं ना, कोई सारे शब्द सुनाई पड़ता है। पार ब्रह्म रहने वाले परब्रह्म भगवान मिलाता और किसी का परवाह, है ना, ऐसा नशा है। तो जब नशा ऐसा होता है तब खुशी चढ़ती है। तो नशा किस चीज को होना चाहिए? दादी जानकी का स्लोगन कौन था, याद है आपको? मैं कौन, मेरा कौन। तो आप लोग और एक ऐड करो, मैं कौन और मेरे पास क्या है। मेरा कौन, सबसे पहले मैं कौन है ये बताओ। मैं कौन, एक तो है समान, बाबा ने इतने सारे समान दिया, आप लोगों ने समान की लिस्ट बनाई है? किसने बनाया, हाथ उठाओ। बस चार पांच लोग हैं। तो कैसे बनाना होता है समान की लिस्ट? वो नहीं जो व्हाट्सएप में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, वो नहीं। अपने हिसाब से एक लिस्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे? नहीं ऐसा नहीं, वो तो सिर्फ ऑफिशियल हो गया डाटा, ऐसा नहीं। अव्यक्त मुरली सुनते हैं ना आप लोग, सुनने के बाद लास्ट में बाबा यादपाट देता है, ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। वो एक एक जैसे होता ना, बाबा के नूरे रतन, बाप दादा के नूरे रतन, तो वो ले लो, मैं आत्मा बाप दादा के नूरे रतन हूं, एक स्लोगन। फिर बाबा कहते हैं और क्या कहते हैं, बच्चे अपकारी को भी उपकार करने वाले, ऐसे बच्चों को वो लिखो, मैं आत्मा अपकारी को भी उपकार करने वाली। तो हर अव्यक्त मुरली के लास्ट में जो टाइटल्स बाबा कहते हैं लास्ट में याद प्यार देते हैं, उन सबको उस दिन, उस मुरली के उस दिन के समान बनाओ। तब याद करो मैं कौन, मैं ये हूं। और मेरा कौन, शिव बाबा की महिमा क्या है, शिव बाबा कौन, क्या क्या है, वो सारे याद करो। और अथॉरिटी जो है बाबा के पास, जो अथॉरिटी है वो लिखो, मेरा बाबा ये अथॉरिटी वाला है, मेरे बाबा ये है, मेरे बाबा ये है, मेरे बाबा ये है। तो और सात सम्मान में उनके अलावा, व्यक्त मुरली के पॉइंट्स टाइटल्स के अलावा और कुछ अपना पर्सनल ऐड करो। कैसे? पर्सनल अनुभव अलग अलग होते हैं ना सबके, बाबा से किसी को भी, हर एक को, हर आत्मा को बाबा का बच्चे बनने के बाद किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी संकट में बाबा मदद देता है, हमें पार करता है। हर एक को किया है, है? किसी को अनुभव है बाबा मुझे कैसे संकट समय पर मदद किया, है ना, हर एक को होता है, हर एक को जीवन में, लौकिक में हो या अलौकिक में हो। तो आपने सुना होगा जगदीश भाई जी, जगदीश भाई जब अभी ज्ञान में थे ही नहीं, तब वो लोग जब बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल थे, क्या करते थे, रोज नदी पे स्नान करने जाते थे, है ना। स्नान करते समय, एक बार वापस आते समय, ये जो दलदल होता है ना उसमें फंस गए। तो दलदल में फंसने के बाद निकालेगा कौन, खुद तो निकल नहीं सकते, जो बाहर होता है वो निकालता है। तो उस समय कौन निकाला उनको, उनको पता नहीं, ऐसा ऐसे करके निकल के आए। तो वो कहते हैं ये किसने निकाला, बाबा ने निकाला। क्यों निकाला, क्यों निकाला, वो तो बीके तो थे ही नहीं उस समय, बाबा को जानते ही नहीं थे, निकाला क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे जो बच्चे हैं ना आप लोग, लाडले सिकले दे राज दुलारे, इनके ऊपर आप लोगों के ऊपर सारे कल्प मेरी नजर रहती है। सुना ये महावाक्य बाबा के, पूरे कल्प मैं ऊपर बैठ के बच्चों को देखता रहता हूं संगमी आने तक। कैसे देखा? सुना होगा, जब बच्चे देवता बन के राज्य करते हैं उस समय ऊपर बैठ के मेरे बच्चे कैसे राज्य कर रहे हैं वो देखता रहता हूं। याद है, सुना है ये बात अब एक मुरली में। फिर बाबा बोलते हैं जब द्वापर युग आया तब बच्चों को देखता हूं कैसे ये भक्ति करते हैं, कैसे मेरी पूजा करते हैं, मेरे लिए बड़े बड़े सोने हीरे मोतियों के मंदिर बनाते हैं। ये देख देख के मैं खुश होता रहता हूं। जब कलयुग आया तब क्या होता है, मेरा मन तड़पना लगता है। क्यों? बच्चों के लिए बाबा क्यों तड़पना शुरू कर देता है? मेरे बच्चे मैं इतना सुखी बनाया था, अभी क्या हो गए, दुखी हो गए, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो फिर कब संगम युग आएगा वो मैं इंतजार करता रहता हूं। तो पूरे कल्प बाबा की दृष्टि हम ब्राह्मण सो देवताओं पर रहती है। ये नशा रहना चाहिए। मैं भगवान के नजर में हमेशा रहने वाले आत्मा हूं। तो इसलिए बाबा हम लोग ज्ञान में आने से पहले ही हमारी तैयारी करता रहता है। आपको पता होगा, अनुभव होगा, आप ज्ञान में आने से पहले कैसे कैसे बाबा एक वायुमंडल क्रिएट करता है आप आने के लिए। बहाना कहते हैं ना, कारण कुछ न कुछ चाहिए। और हर पर संकट, हर परिस्थिति में बाबा भक्ति मार्ग में भी आपकी रक्षा करता है। हमें नहीं पता कौन रक्षा करता है, फिर भी बोल देते भगवान रक्षा करता है, लेकिन भगवान को पता है मेरे बच्चे कौन है। इसलिए पूरे कल्प बाबा हमें देखता रहता है। मिसाल के तौर पर ब्रह्मा बाबा की कहानी तो सुनी होंगी आप। बाबा बचपन में कैसे थे? साधारण व्यक्ति, एक स्कूल मास्टर के बेटे, पांव में चप्पल भी नहीं होते थे और स्कूल में भी उतना इंटेलिजेंट नहीं थे, ज्यादा भी पढ़ाई नहीं की। फिर जब बड़े होते होते अचानक जौहरी कैसे बन गए, इसके बारे में सोचा आप लोगों ने? हीरे मोतियों को परखने की शक्ति अचानक कैसे आ गई, कहां से? वो तो बचपन से होना चाहिए ना, या बड़े होने के बाद आना चाहिए? नहीं आया। ये बाबा की देन थी, क्योंकि बाबा को उस आत्मा से यज्ञ रचना रचनी थी, है ना? तो इसलिए कहते हैं ना, भगवान को आप खुद को चाहिए तो चप्पड़ फाड़ कर भी देता है और थप्पड़ मार कर भी देता है, है ना? और मम्मा भी उतना ये नहीं थे ना, सबसे जैसे बाकी बहनें जैसे थी वैसे ही थी, है ना? लेकिन वो कैसे आगे बढ़े, सब पुरुषार्थ कर रहे थे। बाबा ने सबको बोला था, भाई तुम लक्ष्मीनारायण बनोगे। हमें भी बोलते हैं, भाई तुम लक्ष्मीनारायण बनते हो। उनको भी बोला था, तुम्हारा लक्ष्य लक्ष्मीनारायण है। तो लेकिन वो क्यों लक्ष्मीनारायण बने? मम्मा बाबा हम क्यों नहीं बने? बाबा हमारा नाम क्यों नहीं लिया? तुम लक्ष्मी बनते हो, नारायण बनते हो। क्या कारण है? ये है निश्चय, नशे। बाबा ने कहा, उन्होंने मान लिया, उनको निश्चय हो गया, वो बन गए, पुरुषार्थ कर लिया। और बाबा को उनको ही बनाना था, ये भी है ड्रामा में, वो बन गए। आधार क्या है? नशा। इस प्रकार अपना अपना कुछ नशे के पॉइंट्स लिख लेना चाहिए, लिखना बहुत जरूरी है। कई लोग सही नहीं, हमारी जो याद की शक्ति स्मरण शक्ति बहुत है, हम सुन लेते हैं, नहीं, लिखने से परफेक्ट बन जाता है, बुद्धि में बैठ जाती है पॉइंट। अपने बारे में मैं कौन, ये भी है, सबसे पहला ये हमें याद रखना चाहिए, मैं भगवान के साथ पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं, ये भी बहुत बड़ा ये है। सब पार्ट बजाते हैं, लौकिक वाले भी पार्ट बजाते हैं, कहते हैं ना भाई सो जीवन एक नाटक है, हम पात्रधारी है, पार्टधारी है, लेकिन हमारा पार्ट किसके साथ है? भगवान के साथ है। हम भगवान के साथ कैसे, कब पार्ट बजा सकते हैं, कौन बताएं, कैसे पार्ट बजाएंगे? संगम पर कैसे पार्ट बजाते हैं आप लोग? हम तो कह, बाबा ने कह दिया मेरा साथ पार्ट बजाने वाले हो, तो पार्ट कैसे बजाते हैं हम लोग? कमाई कंबाइंड कैसे करते, कमाइंड कोई सुनाए अपना अनुभव, बाबा को कैसे अपना साथ रखकर पार्ट बजाते हैं? देखो को एक्टर्स होते हैं ना, ड्रामा में हो सिनेमा में हो, साथ साथ पार्ट बजाने वाले कैसे पार्ट बजाए, एक दूसरे के सहयोगी होते हो, एक दूसरे के लिफ्ट देते हैं। नाटक में देखा हुआ ना, कोई बोलने में अगर कुछ अपना डायलॉग भूल गया तो वो पीछे से क्या करते हैं, सुनाते। उस प्रकार एक दूसरे के सहयोगी होना, वैसे कैसे सहयोगी, मैं जो करता हूं वो काम मुझे भी करना है, साथ साथ बाबा से भी कराना है, एक। और दूसरी बात, बाबा जो करता है, जो पाठ बजाता है, जो कर्म करता है, बाबा का कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, शिव बाबा का या बाप दादा का कर्तव्य क्या है? पतितों को पावन बनाना, विश्व परिवर्तन करना, इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना, ये कर्तव्य है ना। तो इस कर्तव्य हमें भी करना है, तब कहेंगे बाबा के साथ पाठ बजाने वाले। तो इस तरह के पॉइंट्स आप अपनी तरफ से, दूसरों के कहे हुए नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत हम क्लास सुनते हैं, YouTube में सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, हर एक का क्लास अलग अलग होता है ना। मैं जो सुनाऊंगा दूसरे अलग सुनाएंगे, दूसरे अलग सुनाओगे तीसरे अलग सुनाएंगे, कई लोगों को कंफ्यूज हो जाता है हम क्या माने क्या नहीं माने, है ना। सुनो सबका, लेकिन मुरली अपना आधार रखो, हमारा फाउंडेशन, हमारा मुख्य आधार क्या है, मुरली। हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, मुरली। मुरली ही सत्य है, मुरली है शाश्वत है, वही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए मुरली कुछ भी सुनो, लेकिन मुरली ही अल्टीमेट, अंतिम जो हमारा जो गति सदगति करने वाली है, ये बाबा की मुरली। अच्छा, खुश रहने के लिए और क्या करना चाहिए? एक तो निश्चय हो गया, एक नशा हो गया, तो खुश रहने के लिए एक गुण चाहिए, उसको कहते हैं संतुष्टता। जिस व्यक्ति में संतुष्टता होती है वो खुश रहता है। अगर समझ लो हमारे पास बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत है, बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए है, घोड़ा गाड़ी माल सब कुछ है, संबंधी बहुत अच्छे हैं, सब प्यार करते हैं, सब है, फिर भी वो लोग सुख नहीं, खुश नहीं है। किस लिए? संतुष्टता नहीं है। इसलिए जीवन में तृप्ति चाहिए। बाबा ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। रहने कोशिश नहीं, रहना ही चाहिए। वैसे देखा जाए तो संगम युग में हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है, है? किसी को है कमी? मैं नहीं समझता कोई संगम में आए हुए ब्राह्मण भूखे पेट सोता होगा। बाबा मिलने से पहले भी इस कलयुग के अंत में हम लोग दो समय का रोटी तो जरूर मिलती थी, है ना, भोजन तो मिलता ही था। ऐसे भीख मांग के भूखे रहकर रहने वाले तो हम है ही नहीं। इस अंतिम जन्म में भी हम लोगों को सब कुछ है, भले राजा महाराजा जैसे नहीं है, एक राजा महाराजा जैसे हमने जीवन दिया, कमी होते हुए भी राजकुमार राजकुमारी राजा जैसा जीवन, किसी के दबाव में किसी के गुलामी में जिया तो नहीं है ना कोई, भले कम थी लेकिन स्वतंत्र जीवन जिया मैं समझता हूं। क्यों क्यों हम अंतिम जन्म में भी बहुत खुश है, क्यों? बाबा का वायदा है, कहने के लिए 21 जन्म बोला है लेकिन 3/4 चार युगों में 3 युग आप बच्चे खुश रहते हो, सिर्फ कलयुग के अंत में थोड़ा बहुत दुख आता है ना, है अनुभव है सबको। इसलिए हमेशा ये रहे कि हम बहुत खुश है, खुश रहेंगे, खुश है, क्योंकि बाबा ये भी बोला ना, बच्चे तुम खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या खुशी देंगे, कल की मुरली में थी ना। इसलिए खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घंटों भर 2 बजे उठ के योग लगाते हैं, सारा दिन ज्ञान सुनाते हैं लेकिन खुशी नहीं है, कोई फायदा नहीं। और खुशी होती है तब भी आपको योग लगेगा, योग लगेगा तब खुशी होगी, एक दूसरे के ये कनेक्टेड है। इसलिए संगम युग में खुश रहना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए। कल भी बाबा ने बोला था ना, कोई आज या कल अगर कोई आपके नजदीक वाले शरीर छोड़ा तो रोएंगे। अभी आप संगम युग में आने के बाद किसी के घर में कोई शरीर छोड़ा, कोई रोए हैं तो हाथ उठा, बाबा के बनने के बाद। पहले अभी बहुत समय पहले, अभी 4-5 साल के अंदर किसी ने भी कुछ भी हो जाए रोया नहीं है, वो हाथ उठाए नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाबा ने क्लियर कर दिया भाई हर आत्मा का अपना पार्ट होता है, पार्ट पूरा हो गया चला गया तो यहां गया तो दूसरी जगह जन्म लेगा, किस लिए चिंता करना है। और ये भी आप जान लो, अगर कोई आपसे अलग हो गए शरीर छोड़ दिया, आप दुखी होते रहेंगे तो आत्मा सुखी रहेगी? आपके दुख के संकल्प दुख की लहरें उस आत्मा को पहुंचती रहेगी, वो और दुखी होते रहेगी। इसलिए अगर वो आत्मा सुख से जीना है, सुखी रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुशी खुशी से उसको विदाई देना, जहां भी रहे अच्छा रहे, ये आपकी शुभ भावना बहुत काम करती है। और खुश रहने के लिए या संतुष्ट रहने के लिए और एक काम करना पड़ेगा, दूसरों को देखना नहीं है, दूसरों के साथ अपने भेंट नहीं करनी, क्योंकि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। बाबा ने बोला कभी समान एक जैसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, वो आत्मा के पास जो चीजें है वो देखकर हमें चाहना नहीं है, हमें बाबा ने जो दिया है उसको देखकर उसको यूज करते उसको सफल करो, इसी में हमारा पार्ट, इसी में हमारा सुख है। दूसरों के वस्तु देखकर पाने की इच्छा नहीं करना, क्योंकि उस आत्मा को उस चीज की जरूरत, इसलिए बाबा उसको दिया, मुझे उसकी जरूरत नहीं। देखो उदाहरण के तौर पर, आपको कोई दोस्त है, हा? आपके पास साइकिल है, उसके पास बहुत बढ़िया 8-10 करोड़ रुपए की एक कार है, वो हमेशा रेशम के कपड़े पहनता है, आप तो खद्दर के कपड़े पहनते हो या कॉटन सूती के कपड़े पहनते हो, वो हजारों रुपए के जूते पहनता है, आप सैकड़ों रुपए के चप्पल पहनते हो, तो उसको देख के आपको क्या लगता है? लगता है मुझे भी चाहिए ऐसा? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? आप तो हम दूसरों की संपत्ति वैभव साधनों को देखकर हमें इच्छा नहीं होती, हमें भी चाहिए, क्यों नहीं होता? हाथ उठाए अगर बताते हैं। अगर माताएं आपके सहेलियां बहुत अच्छे अच्छे साड़ी पहनती है, बनारस की साड़ी, चेन्नई की साड़ी, पीताम्बर की, रेशम की, है ना, कहते हैं, और बड़े बड़े गहने डालते हैं, वो नकली है या असली है पता नहीं, सोने की मालाएं डालती है, इधर उधर उधर सोलह श्रृंगार करते हैं, उनको देख आपको लगता है हमें भी सोना चांदी पहनना चाहिए, क्यों नहीं लगता? और एक राज है इसमें, अगर समझो आपको आज खूब मिठाई खिला लिया सुबह, ठीक है, अच्छी तरह पेट भर के तरह तरह के मिठाइयां खिला लिया, फिर दोपहर में या एक आधा घंटे के बाद वही मिठाइयां आपके बगल में बैठे हुए व्यक्ति को खिला रहे, आपको देख के खाने की इच्छा होती है? क्यों नहीं होती? इससे पहले आप खा चुके हैं, है ना, हमने इससे पहले खा चुके हैं, तो हमने खा के जो छोड़ा है बचा हुआ ये लोग खा रहे, हे भावना आती है? वैसे ही आप लोग सतयुग से लेकर इतने सारे सुख वैभव संपत्ति या सारा भोगते भोगते आए हैं, वो थोड़े से जन्म एक दो जन्म आपको झूठा खा के बड़े कहला रहे, है ना, ये भावना आती है? आना चाहिए, ये है सच, वास्तविकता यही है। अभी तक कई बार बाबा बोलते हैं ये जो मुसलमान आए भारत को लूट के गए, क्रिश्चियंस आए भारत को लूट के गए, हाँ फ्रेंच वगैरह वो भारत को लूट के गए, सब भारत आके लूट के गए, क्यों लूट के गए? एक तो भारत परमात्मा का जन्म स्थान है, अच्छा परमात्मा का डायरेक्ट वर्षा किसको मिला? हम भारतवासियों को मिला, उनको तो नहीं मिला ना, उनको परमात्मा से वर्षा ही नहीं मिला, तो हर एक बच्चे का अधिकार है ना बाप से वर्षा लेने का, तो कैसे लेंगे वो? शिवा वो तो डायरेक्ट देगा नहीं, तो अगर बाप नहीं देता है तो फिर बच्चे क्या करेंगे? अपने भाइयों से छीन कर ले जाएंगे, क्योंकि उनका भाग्य नहीं है भगवान से मिलकर प्राप्ति या प्रॉपर्टी पाने का, वर्षा पाने का। बाबा ने हमें दिया, भारत को दिया, इसलिए भारत ही सब आके बाबा का वर्षा ले जाते, ठीक है। ऐसे बाबा ने सब कुछ सुख आपको दिया, वैभव आपको दिया, संपत्ति आपको दिया, तो आप उसका भोग करते 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 लास्ट जन्म में जो बचा था तो दूसरों को भी मिलना है ना, देना चाहिए ना, इसलिए उसको मिलता है। इसके कारण बाबा कहते बच्चे संगम युग में कहां रहो, वनवाह में रहो, ऊंचे कपड़े मत पहनो, ऊंचा ऊंचा खाना भोजन मत करो, दुनिया को दिखावा मत करो, कैसे जीवो? सादा जीवन जीवो। इसलिए जीवन सादा, संगम में सादा जीवन बहुत जरूरी है, और सादा जीवन के बाद और एक बात, और क्या करना है? वैरागी भी बनना है। वैरागी माना त्यागना, हर वस्तु से नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो है उतना ही मेरे लिए बस, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अगर चाहिए चाहिए तो आपको योग नहीं लगेगा, उसको पाने के लिए बुद्धि भटकने लगेगी, बस बाबा मिला सब कुछ मिला, बाप मिला सब कुछ मिला। ये वैराग्य भाव कब आता है कौन बताएंगे? वैराग व्यक्ति को कब आता है? जब सब प्राप्तियों से संपन्न रहता है। और वैराग्य तब आएगा तो परमात्मा से बेहद प्यार रहेगा। गृहस्थ कोई वैराग्य नहीं बनता, वैराग्य वही बनता है जो परमात्मा से ढूंढते जाता है, उसको पाना चाहता है, उसको वैराग्य आता है, क्योंकि उसके सामने परमात्मा के सिवाय और कुछ भी भासता नहीं, अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता। तो प्यारा नहीं लगता माना वैराग्य। इसलिए वैराग्य चाहिए। तो वैराग्य के लिए क्या चाहिए? बाबा के प्रति तीव्रतम प्यार, गहरा प्यार, उसको शक्तिशाली प्यार कहते हैं, वो चाहिए। तो प्यार कैसे करे? हाँ, प्यार कैसे करे परमात्मा से? अब किसी ने लौकिक में जो शादीशुदा है वो कोई लव मैरिज वाला है? यहाँ पे हाथ उठा, लव मैरिज किए हुए कोई है? कोई नहीं है, सब अरेंज मैरिज वाले हैं। अच्छा, अगर आप कोई दो व्यक्ति आपस में प्यार करना है, किसी एक व्यक्ति को समझ लो, किसी एक लड़के को एक लड़की से प्यार करना है, वो क्या क्या करेगा? कई बार कहते हैं हमें बाबा से प्यार ही नहीं होता, मैं याद करना चाहता हूं लेकिन प्यार आता नहीं। तो प्यार नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा? प्यार क्रिएट करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा। तो कैसे उत्पन्न करें? आपने देखा कोई लवर्स कैसे, वो लोग शुरुआत कैसे करते हैं? उसको बाबा ने भी बोला ऐसा करो है? नहीं पता। देखो पहले क्या करते हैं? सबसे पहले वो जिसको चाहता है उसके बार बार सामने जाना चाहता, उसको दिखाई पड़े मैं आ रहा है ना, बार बार उसके पास जाना, फिर भी वो देखा नहीं तो क्या करेगा? उसके आसपास घूमता रहेगा, फिर भी वो देखा नहीं समझ लो, फिर आगे क्या करेगा? हेलो हाय ये करना शुरू करेगा ना, फिर भी नहीं देखा, फिर क्या करेगा? सामने जाके स्माइल करेगा। हाँ, नहीं तो फिर क्या करेगा? फिर भी नहीं माना तो उसके सामने जाकर बैठ जाएगा, देखते ये सारे ट्रिक हमें भी अपनाना है। बाबा ने बोला क्या करना? बाबा के आगे पीछे घूमते रहना। कैसे घूमे बाबा? बाबा तो दिखाने पड़ना, साकार में ना अव्यक्त में। हमारा ज्ञान है अनुभव करने का ज्ञान, अनुभव करना। आपने देखा है वो बाबा के जो हिस्ट्री हॉल में ना, वहां ब्रह्मा बाबा खड़ा है, एक छोटा बच्चा है, बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है ऐसा ऐसा। और ये आप कोई आप देखेंगे, आपका बच्चा हो या पोता पोती हो, आप लेके चलते रहते हैं, वो बच्चा या बच्ची आपका हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा चलते, तो भी डांस करते करते चलता रहता है, वो चलते रहते है ना, वो अनुभव हमें करना है। साकार बाबा को साकार ही समझ के चले, हमें क्या अनुभव करना है ना, मेरे साथ बाबा खड़ा है, तो ऐसे बच्चा बन के हाथ पकड़ के नाचते चलो, हंसते चलो, तो प्यार अपने आप हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अगर आपको योग नहीं लगता तो क्या करो? मेरे चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ। गीत सुना देखने वाले बाबा के नैन के बारे में, बाबा के आंखें देखते रहो, अनुभव होता जाएगा। या ये भी है, अगर कोई चीज हमें चाहिए, हमें पप्पा से मांग नहीं पा रहे, क्या करना, जाके बाप के सामने बार बार जाके बैठ जाओ। वो बाप कितने भी बिजी हो, क्या बात है आज लड़का बार बार मेरे सामने आके बैठ रहे, आखिर वो पूछेगा बेटा क्या चाहिए, है ना। अगर आपको योग नहीं लगता तो बाबा के सामने जाके बैठ जाओ, चित्र के सामने, ट्रांसलेट के सामने, जहां भी जाके जाके बैठ जाओ, कुछ भी संकल्प नहीं करो, बैठ देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो। तो एक बार तो बाबा पूछेगा ना बच्चा क्या चाहिए। तो ऐसा करते करते क्या होता है, प्यार जुड़ता जाएगा। इसलिए पहले उसको संपर्क में आना पड़ेगा, आसपास आगे पीछे घूमने का, फिर संबंध में आना पड़ेगा, संबंध जोड़ना पड़ेगा। हाय फ्रेंड, हेलो, आप दोस्त बने, हम फ्रेंड्स बने, हाँ, कॉफी पीने जाए, ऐसे बाबा से बात, बाबा हम दोस्त बन जाए, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, चलो खेत में जा लेंगे, चलो थोड़ा दुकान में जाएंगे। तो फिर जब प्यार हो गया, फिर प्यार और गहरा कैसे करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो जिससे मैं प्यार करता हूं या करती हूं उसके पसंद क्या है, नापसंद क्या है, वो देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि वो प्यार आगे बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है, उसको मेरे विश्वास पात्र मुझे बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, पसंद नापसंद। तो फिर हमारे प्यारा लवर जो है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो ढूंढना पड़ेगा। बाबा को क्या नहीं पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्रोध करना पसंद नहीं है, किसी को दुख देना पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है, विकार में जाना पसंद नहीं है, बुरी चीज खाना पसंद नहीं है, बुरी दृष्टि रखना पसंद नहीं है, है ना। बाबा को क्या नहीं पसंद था वो एक लिस्ट करो, वो छोड़ दो, फिर उसको क्या पसंद है, उसको उसको सदैव याद करना पसंद है। वो कहते हैं मेरा छोड़ के किसी को याद नहीं करो, सिर्फ मुझे याद करो, तो वो करना पड़ेगा। फिर कहता है ये तो भाई ब्राह्मण संसार परिवार बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, मैं जितना प्यारा हूं ये भी उतना प्यारा है। फिर बाबा कहता है ये ड्रामा मेरे को बहुत पसंद है, बच्चों को पसंद आना चाहिए, और खुश रहने के लिए ड्रामा का भी पॉइंट्स बार बार याद करना चाहिए। ड्रामा क्या है, संगमी में ड्रामा क्या है, कल्याणकारी, कुछ भी होता है हमारे लिए कल्याण है। क्योंकि ये साइकोलॉजी की एक सत्य है, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, यद भावम तद भवती, सुना ये श्लोक, आपका भावना जैसा है वैसे आपको मिलेगा। इसलिए कल्याण है तो कल्याण, अकल्याण है क्या है मेरा है, क्या कहते हैं उसको, बोलते हैं विधि बरा, मेरा क्या है सही है, किस्मत खराब है, खराब है तो खराब, मेरा किस्मत बहुत अच्छी है, अच्छी है। इसे जैसा मानोगे जैसा सोचोगे वैसा हमें मिलेगा। आपको एक कहानी सुनाऊं, एक छोट लास्ट में, दो दोस्त थे वो घूमने निकले पैदल, निकलते निकलते धूप में थक गए, दूर जाके एक पेड़ के नीचे एक पेड़ दिखाई पड़ा, वहां जाके बैठा, आहा कितने छाया है, कितना शीतल है। तो फिर इस समय पर थोड़ा ठंडा ठंडा पानी मिल गया तो अच्छा होता है, तो आ गया पानी, एक मटका वाला पानी पिया तो बहुत खुश हो गए, अरे वाह एक अच्छा भोजन मिल गया तो और अच्छा होता, तो वो भी आ गया, अरे वाह क्या ठंडी ठंडी हवा आ जाए और अच्छा, हवा आ गई। फिर वो घबरा गए, क्या बात है भाई, ये मैं हम जो सोचते वो सब आ रहा है, तो भूत तो नहीं आस पास, तो भूत भी आ गए। फिर कहने लगे तो भूत हमें खाएंगे तो नहीं, वो खा लिया। क्या ये कहानी का अर्थ, वो पेड़ है कल्प वृक्ष, ये संगम युग है, संगम युग में हम ब्राह्मण बच्चे जो संकल्प करेंगे तथास्तु, इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी बुरा मत सोचो, शुभ सोचो, शुभ करो। इसलिए खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, आग लगे बस्ती में मस्त रहो अपनी मस्ती में, बस बापा मिला सब कुछ मिला। ठीक है, ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।